بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملفوظات حضرت مسیح موعود، 11 اکتوبر سن 1902۔ ایک صاحب نوارد کو، جن کا نام مولوی حامد حسین صاحب تھا، مخاطب کر کے فرمایا، بہتر ہے کہ آپ 5-7 دن یہاں قیام کریں، جتنا عزم اور جلد واپس چلا جانا ٹھیک نہیں۔ دنیاوی کاموں میں لوگ کتنی تحقیقات اور چھان بین کرتے ہیں، حقیقت میں جو شخص جلدی رائے قائم کر لیتا ہے وہ دوسروں کو بھی اطلاع میں ڈالتا ہے۔ پس خلاف واقعہ رائے ظاہر کرنا خون کرنے کے برابر ہے۔ بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جو انسان ان پر زیادہ غور کرتا ہے اسی قدر نتیجہ عمدہ نظر آتا جاتا ہے۔ انسان کو سچائی تک پہنچنے کے واسطے دو باتوں کی ضرورت ہے، اول خدا داد عقل اور فہم ہو، دوم خدا داد سمجھ اور سعادت ہو۔ جن لوگوں کو مناسبت نہیں ہوتی ان کے دلوں میں کراہت اور اعتراض ہی پیدا ہوتے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے راست بازوں کا انکار کیا۔ آپ دور دراز سے آئے ہیں اور آپ کو آتے ہی ایک روک بھی پیدا ہو گئی، اور ہم نے تو ایک ہی روک کا ذکر سنا ہے، مخالفانہ گفتگو کے بجز احقاق حق نہیں ہوتا۔ بہت لوگ منافقانہ طور پر ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، بس ایسے لوگ کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تم خوب جی کھول کر اعتراض کرو، ہم پورے طور پر جواب دینے کو تیار ہیں۔ مولوی حامد حسین صاحب کی طرف سے سوال ہوا کہ تمام اہل مذاہب اپنے مذہب کو صحیح خیال کر رہے ہیں، ہم فیصلہ کس طور سے کریں؟ حضرت اقدس نے فرمایا، بات یہ ہے کہ آج کل بلکہ ہمیشہ سے سچے مذہب کی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ دو باتیں اس میں موجود ہوں، اول اس کی تعلیم پاک ہو، اور تعلیم پر انسان کی عقل اور کانشنس کا کوئی اعتراض نہ ہو، کیونکہ ناممکن ہے کہ خدا کے امور ناپاک ہوں۔ دوم، اس کے ساتھ تائیدات سماویہ کا سلسلہ ایسا وابستہ ہو کہ جس کے ساتھ انسان خدا کو پہچان سکے اور اس کی تمام صفات کا مشاہدہ کرے تاکہ گناہ سے بچ سکے۔ تو انسان سچے مذہب میں ہی داخل ہو، پر اگر اس کے ساتھ کشتی نہیں تو وہ ایسے چشمے کی مثل ہے کہ جو ایسی جگہ واقع ہے جس کے ارد گرد پہاڑ یا دیوار یا ایسا خارستان ہے کہ وہاں ہم کسی طرح پہنچ نہیں سکتے، بس ایسا چشمہ ہمارے لیے فضول ہے۔ غرض ضروری شرط یہ ہے کہ اس قدر اسباب موجود ہوں جن سے پکی طرح پر معرفت الہی پیدا ہو جاوے۔ یہ بات بھی بدی ہے کہ انسان کو زیادہ مصیبت اس بات کی ہے کہ طرح طرح کے مصائب، شدائد، کسل وغیرہ، کیڑے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کھاتے اور خدا سے روکتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان ایک بوجھ پڑا ہوا ہے۔ بس اس مذہب میں ایسے وسائل ہوں جو اس کو روز بروز کھینچتے جاویں اور کامل یقین پیدا کر کے خدا سے ملا دیں۔ دنیا تو یہی سمجھتی ہے کہ کیا ہم خدا کے منکر ہیں، لیکن اس کے اعمال کہتے ہیں کہ ضرور وہ منکر ہیں۔ میں نے اس بات کا ذکر اکثر کتابوں میں بھی کیا ہے۔ دیکھو، اگر ایک سوراخ میں سانپ ہو تو کیا ایک شخص اس بات کو جان کر کہ اس سوراخ کے قریب جاوے گا یا اس میں ہاتھ ڈالے گا؟ ایک بن میں بہت درندے رہتے ہیں، کیا باوجود علم کے اس بن میں کچھ جاوے گا؟ ایک زہریلے کھانے کو علم پا کر کھاوے گا؟ بس معلوم ہوا کہ یہ امر یقین کے لوازم میں سے ہے کہ جس بات کو اور جس چیز کو وہ مولک سمجھتا ہے اس کے قریب نہ جاوے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک موقع پر حقوق انسانی کو چھینتا ہے، تلف کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، نہ غصہ اعتدال پر ہے وغیرہ وغیرہ، پھر پرانا سالی اس کو ان گناہوں سے چھڑاتی ہے، پر جب تک جسمانی قوا اس کے ساتھ ہیں ہر ایک قسم کی بدکاریاں کرتا ہے، بس معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خدا پر ایمان ہے۔ ہر ایک شخص اپنے نفس سے گواہی لے سکتا ہے کہ جیسا اس کا حق ہے اعتدال پر چلنے کا ویسا وہ نہیں چلتا۔ بس بڑا مقصود یہ ہے کہ یہ جو بے اعتدالیاں انسان سے ظہور میں آتی ہیں ان پر غور کرے کہ ان کا کیا سبب ہے، تو آخر معلوم ہوگا کہ جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے وہ پورا پورا نہیں ہے۔ بعض دفعہ احسان سے اور بعض دفعہ خوف سے گناہ کم ہو جاتے ہیں، جیسے نسبتاً شریر لوگ ایام امراض، طاعون و حیضہ میں نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ پس ضروری ہے کہ جہاں دو باتیں پائی جائیں، تعلیم پاک اور رفتہ رفتہ خدا تک پہنچ جانا، وہی سچا مذہب ہے۔ और ये दोनों जरिए ऐसे हैं, और ये दोनों जरिए ऐसे हैं कि सिवाय इस्लाम के कहीं नहीं मिलेंगे, जिस खुदा को इस्लाम पेश करता है इस सफाई से और किसी मजहब ने पेश नहीं किया। एक तरफ तो इस्लाम की तालीम आला है, दूसरी तरफ एक शख्स 10 दिन भी तब्दीली करे तो उस पर अनवारों बरकात नाजिल होने शुरू हो जाते हैं। आजकल इस्लाम के बहुत फिरके हो गए हैं, गोया घर घर एक फिरका बना हुआ है, ऐसे तशवीश हो गई है। एक तरफ किया है कि हुसैन अलैहिस्सलाम को मिसले लात के बना रखा है, तो एक शख्स कह देगा कहाँ जाऊं, शिया हुसैन परस बने हुए हैं, खवारिज अली को गालियां देते हैं, दरमियान में अहले सुन्नत हैं, अगरचे बज़ाहिर उनका इतदाल नजर आता है, मगर अब उन्होंने ऐसे काबिल शर्म एतकाद बना रखे हैं कि वो शिर्क पे पहुंच गए हैं। मसलन मसीह को खालिक बना रखा है, हियाए मौता करने वाला माना हुआ है, बस पाक मजहब वही है जो कुरान का मेयार अपने हाथ में रखता है। अगर के इंसान बजायर घबराता है कि इस पाक मजहब को मैं किस तरह पाऊं, मगर याद रखो कि जो इंदा या बिंदा सब्र और तकवा आपसे न दे, वरना खुदा ताला गनी है, उसको किसी की क्या परवाह है। बस इंसान खुदा के सामने खाककार बने तो उस पर लुत्फ और एहसान करता और उसकी आंखें खोल देता है, तौबा दुआ इस्तिगफार करे और कभी ना घबरावे। हर एक शख्स बीमार है और कभी सेहत नहीं पा सकता जब तक खुदा को ना देख ले, बस हर वक्त उदास और दिल बर्दाश्त रहे और तमाम ताल्लुकात को तोड़कर खुदा से ताल्लुक पैदा करे, वरना उस वक्त तक के जब तक के खुदा उससे नहीं मिला ये गंदा और नजस है। खुदा ताला ने फरमाया है मन काना फी हाजी आमा फहुवा फिल आखिरत आमा, सूरह बनी इसराइल आयत 73। खुदा पर यकीन बड़ी दौलत है, बस अंधा वही है जिसको इसी दुनिया में खुदा पर पूरा यकीन हासिल नहीं हुआ, पर जब उसका हुस्न जमाल जलाल उस पर जाहिर होगा तो खुदा की तजल्ली होगी, और फिर ये देखकर मुमकिन नहीं कि खुदा के इंसान गुनाह की तरफ इंसान रुजू कर सके। बस गुनाह भी तभी करता है जब उसको खुदा पर शक पड़ जाता है, पर जो शख्स नफ्स का खैर खा है उसको तो खुदा पर यकीन होना चाहिए। मसीह के जमाने में तो गुनाह की कमी थी, मगर कफारे ने दुनिया को गुनाह से पुर कर दिया। इंसान अपनी कोशिश से कुछ नहीं कर सकता, हदीस में आया है कि तुम सब अंधे हो मगर जिसको खुदा आंखें दे, तुम सब बहरे हो मगर जिसको खुदा कान दे। पर जब इंसान को खुदा हिदायत देने लगता है तो उसके दिल में एक वायस पैदा कर देता है, पर जब तक दिल का वायस ना हो तसल्ली नहीं हो सकती। पर दीनी अमूर में जब तक तकवा ना हो रूह कुदस से ताइद नहीं मिलेगी, वो शख्स जरूर ठोकर खाकर गिरेगा। इस दीन की जड़ तकवा और नेकबख्ती है, और ये मुमकिन नहीं जब तक खुदा पर यकीन ना हो, और यकीन सवाए खुदा के और से मिलता नहीं। इसलिए फरमाया वल्लदीना जादू फी ना लना भी अन्ना कोबराना अलंकबूत आयत 70। बस इंसान दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी पर नजर डाले और अपनी हालत पर रहम करे कि मैंने दुनिया में क्या बनाया, सोचे और जाहरी अल्फाज की पैरवी न करे और दुआ में मशगूल रहे, तो उम्मीद है कि खुदा उसको अपनी राह दिखा देगा। नेक दिल लेकर खुदा के सामने खड़े हो और रो रो कर दुआएं मांगे, तजर्रो और आजिज़ी करे, तब हिदायत निकलता। इससे हमारी बहस नहीं, उनकी सरिश्त में इनकार है, वह मौत के बाद उसका नतीजा देख लेंगे। साजिद मन को तो समझाने की जरूरत नहीं, पत्थर पर लोहा मारने से आग इसलिए निकलती है कि आग पत्थर में मौजूद है और वो सिर्फ जर्ब का मोहताज था, मगर जिसके अंदर मौजूद नहीं उसमें से क्या निकलेगा। हर एक नेकी तब कबूल होती है जब उसके अंदर तखवा हो, वरना कबूल नहीं होती। जिंदगी तो बर्फ के टुकड़े की मिसाल रखती है, हजारों पर्दों में रखो पिघलती जाएगी। असल में मुखालिफ की बात का इम्तिहान मुखालिफ से पूछ कर होता है। मैंने तो अपना मसलक बयान कर दिया है, मेरे पास बहुत से ईसाई आया करते थे, अब नहीं आते। मैं तो उनको हमेशा ये कहता हूँ कि जिंदा मजहब साबित करो, मुर्दा तो हमें उठाना पड़ेगा, और जिंदा हमको उठावेगा, कुछ जवाब नहीं दे सकते। यूरोप अमेरिका में 16,000 इश्तहार रजिस्ट्री कराकर भेजा, कोई जवाब नहीं आया। हमारा खुदा जिंदा है, हमारी आवाज सुनता है, हमें जवाब देता है, बस हम सलीब पर चढ़े हुए खुदा को क्यों माने। ये लोग शरीर होते हैं और उनके पास बातें ही बातें होती हैं। मैं 15 बरस का था जब से उनके और मेरे दरमियान मुबासात शुरू हैं, उनके पास सिर्फ एतराज एतराज हैं, और हमेशा हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते हैं, और जाहिलों और बदनसीबों को इन एतराजात से शक पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ ये लोग उसको तमे दुनिया भी देकर इब्तला में डालकर मुर्तद कर लेते हैं। मैंने सुना है कि 29 लाख आदमी को उन्होंने हिंद में मुर्तद किया है। बस इस्लाम का सख्त दुश्मन यही मजहब है। आर्य लोग हैं मगर उनके साथ तो जमीनी सल्तनत भी यावर नहीं, तो क्या मुकाबला कर सकते हैं। एक अखबार ने अपनी तहकीकात लिखी है कि आर्य मजहब के होने से हिंदू बहुत मुसलमान हो रहे हैं, मरते भी बहुत हैं और मजहब भी बहुत छोड़ते जाते हैं, बस ये मजहब तो कुछ चीज नहीं। टाउन को देखा है कि पहले अनूर में आती है, बम्बई, सियालकोट, जलंधर वगैरह में पहले अनूर से शुरू हुई और जब मुसलमानों में गई तो भी अनूर को शामिल कर दिया। नौ वारिस साहब ने वजूदे फिरके की नस्बत सवाल किया। इस पर हजरत अकदस ने फरमाया, मेरे नजदीक ये बात भी तदब्बुर के लायक है, यही वजूद और शहूद। मेरा मजहब तो ये है कि वहां कदम रखना गलती और जरूरत है जहां इंसान कदम रखने का मुस्तक नहीं। वजूदी फलसफी रंग का दावा करता है और कहता है कि जिस तरह डॉक्टर मुर्दा फाड़ कर उसका अंदर देख लेता है, मैंने इसी तरह खुदा को देख लिया है। ये भी दावा है कि अल्हम्दुलिल्लाह खलकल अशिया वहवा आयनुहा, ये बहुत बड़ा दावा है। सहूदी मजहब इस्तेलाए मोहब्बत का नाम है, जैसे लोहा अगर आग में नहाय सुर्ख हो जावे तो सुर्ख में कोई देखने वाला अगर उसको आग कह दे तो एक सूरत से माजूर ठहर सकता है, क्योंकि आग इस पर मुतौली हुई होती है। किसी का शेर है, मन तू सुदम तू मन सुधी, मन तन सुदम तू जान सुधी, ताकस न गोयत बाद दें, मन दी गरम तू दी गरी। गरज सऊदी मजहब की यह बिना है कि इंसान खुदा के वजूद से बहुत बेरावर हो सकता है। जब खुदा और मखलूक की मोहब्बत एक दिल में आकर जमा होती है तो इंसान पर एक नया रंग चढ़ता है और इस हालत में वह अपने आप को देखता है कि गोया बिल्कुल खुदा में खोया गया है और अपने दिन माफ देखता है और खुदा ही खुदा नजर आता है। वजूदी एक हकीकत का तलबगार होता है, उसको मोहब्बत से कुछ ताल्लुक नहीं, जैसे आजकल के वजूदियों का दावा ही दावा है कि मैं खुदा हूँ। शहूद वाला कहता है कि इंसान इंसान है और खुदा खुदा, यानी शहूद के तौर पर अपने तीन तालिब और खुदा में खोया हुआ पाता है। अगर इंसान को खुदा बनना था तो या तो इस जहान में खुदा बनता या आखिरत में खुदा बनता, मगर साबित है कि जहां भी इंसान है और वहां भी ये जामा तो उसके ऊपर से उतरता नजर नहीं आता। हम कहते हैं कि हर एक शख्स अपना रंग रखता है, बहुत लोग कव्वाली में ही लज्जत उठाते हैं, मगर मैं देखता हूं कि ये आरिफाना मतलब नहीं। बस अगर उसकी कोई दलील दुनिया में होती तो चाहिए था कि कोई आदमी तो ऐसा नजर आता जिसमें खुदाई के सिफात होते। दुनियावी लोगों के मनगढ़ खुदा, मनगढ़ंत खुदा और खुदा के मुरसल बंदे का मुकाबला यूं हो सकता है कि मसीह को तो खुदा माना और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के मुरसल थे, बस मुकाबलतन देखो कि मसीह को तो पकड़ लिया गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने वाला खुद मर गया। बस इंसाफ करो कि एक शख्स इंसान कहलाता है और अपना काम खुदा पर छोड़ता है, उसको पकड़ने वाला खुद मारा जाता है। यहूदी जिसकी सिफत में आया है गुरबत आलम जिल्लत वल मस्कना, वो उस खुद खुदा कहने वाले को एक ही घंटे में गिरफ्तार कर लेते और मारने को तैयार हो जाते हैं। फाता फिरू जाओ लगता, अगर कोई ये कहे कि वो मार खुदाई थी तो उसको जाने दो। जहां तक हम देखते हैं खुदा हमसे बातें करता है और खवारेक और मौजा दिखलाता है, पर फिर भी हम इंसान हैं। दीवार का वजूद एक अलग चीज है और धूप का वजूद अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये सारी बातें चाहती हैं कि कोई रब है और कोई चीज मखलूक भी है। बस हमको अपनी खुदाई का सबूत दें, खुदा ने इंसान को मखलूक पैदा किया है और दुनिया में भी मखलूक बनाया है, फिर हम चांद सूरज वगैरह को किस तरह खुदा मान लें। तमाम अंबिया से खौफ जाहिर होते रहते हैं, अगर इनमें कुछ भी खुदाई का रंग होता तो खौफ क्यों आता। मेरी जमात में भी एक शख्स मौलिया में जान साहे वजूदी थे, कभी उन्होंने मुझसे इस मसले पर गुफ्तगू नहीं की। अब थोड़ा अरसा हुआ है कि वो फौत हो गए हैं और सारी उम्र इसी में गुजार दी। हम किसी के दर खरीद नहीं, हम तो असलम और रोशन तर राय इख्तियार करते हैं, वजूदियों के कोई दुश्मन नहीं, हम तो उनको काबिल रहम समझते हैं। इस पर नौवारिस साहब ने आयत अवल अव्वल वल आखिर अल हदीस आयत 4 वादत वजूद के सबूत में पेश की। हजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला का कलाम ऐसा है जिसकी तफसीर बास आयत की बास से होती है। अव्वल की तफसीर यह है कि कान अल्लाह हो वलम यकुन माउन, आखिर के माने हैं कुल्लो मन अलैहा खान सूरह रहमान आयत 27। हम तो इन्हीं मानों को पसंद करेंगे जो खुदा ने बताया है। अफसोस है कि इस जमाने के वजूदी सौम सलात के तो पाबंदी नहीं और कुरान को कभी खोल कर देखा ही नहीं। हाँ, मैं अपने इस मुल्क की बात करता हूँ जिसमें जलंधर, बटाला, होशियारपुर, सियालकोट वगैरह शामिल हैं। इन लोगों को मैंने शराबखोरों, रंगियों और डैरियों के मजलिस में अक्सर देखा है। अक्सर कहते हैं कि वजूदी वो है कि जो खुदा का नाम भी ना ले, बल्कि जो कुछ है मखलूक है। बस ये लोग कहते हैं कि आला वजूदी वो है जिसको लोग डैरिया कहते हैं। बस हर शख्स अपने कॉल ऑफ फेल का खुद जिम्मेदार है। फकान अल्लाह वलम यकुन माउ शाय हदीस है और हदीस और तौरात से साबित है कि खुदा था और जमीन और आसमान वगैरह में से कुछ ना था। यह मुसल्लम मसला है तमाम अहले किताब का। तुम्हारा इख्तियार नहीं कि मरोड़ कर और माने कर लें। बाद आदमी मजाक के दिलदादा होते हैं, मगर मजाक भी एक किस्म का जहर है। हमें मजाकी माने पसंद नहीं करने चाहिए, बल्कि तौरात कुरान और हदीस को देखना चाहिए। वो यही कहती हैं कि एक वक्त ऐसा था कि इन मौजूदा चीजों में से एक भी न थी। मेरे ख्याल में वादत वजूद भी मजाक से पैदा हुआ है। कुल कुतुबे गुज़श्ता से यही मानी साबित होते हैं और उसकी तफसील कुरान और तौरात में मौजूद है। अव्वल तो इन बातों की हाजत नहीं, इंसान के वास्ते पहले तो यही अमर जरूरी है कि इजमाली तौर पर खुदा पर ईमान लावे। जब उसका ईमान पैदा होगा तो खुद ब खुद इस पर हकायक खुलते जाएंगे। देखो एक मर्ज में कुव्वत जायका जाती रहती है, तुर्शी मीठा कड़वा नमकीन वगैरह सब कुछ बेमज़ा मालूम होता है। बस मालूम हुआ कि कुव्वत हादसा भी काम दे रही है। एक कुव्वत नाक में होती है जिसके वो नहीं रहती, उसको अक्षम कहते हैं। बास के कानों की कुव्वत मारी जाती है, पर जब इस तरह बास कुव्वतें जाती रहती हैं तो इसी तरह बाज औकात दीनी कुव्वतें भी बेहिस हो जाती हैं। और इंसान सैयद अहमद खान की तरह दुआ का कबूल होना और ऐसी बातें नामुमकिन ख्याल कर बैठ। फरमाया दुआ के कबूल होने पर हमारा कामिल ईमान है और हमने उसका नतीजा भी देखा है कि लेखराम के कत्ल से पहले 5 साल मैंने खबर दी थी। मैंने सैयद अहमद खान को लिखा था कि मैंने लेखराम के वास्ते दुआ की है तो मुझे खबर दी गई है कि तेरी दुआ कबूल हो गई है और खुदा ताला उसको हैबतनाक मौत से मारेगा। यही नमूना तुम्हारे सामने पेश करता हूँ कि अगर ये दुआ कबूल ना हुई तो तुम्हारे दावे का सबूत हुआ, और अगर कबूल हो गई तो तुम इस अकीदे से तौबा करना। और वह लेखराम की मौत देकर फौत हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है ला तुदरिकुल अफ़्फ़ार वा हुवा युदरिकुल अफ़्फ़ार अलनाम आयत 107। आंखें तो उसको देख नहीं सकती और वो आंखों को देख सकता है। जब वजूद ही हो गया तो फिर बाकी क्या रह गया। असल में ये सब मजाकी बातें हैं। सबूत तो वो है जिसका नमूना इंसान दिखलावे। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सलाम के मसाइब पर जरा गौर करो। इन बातों के जिक्र की जरूरत नहीं। अव्वल खुदा से ताल्लुक पैदा करो। जब इंसान किसी घर में दाखिल होता है तो अंदर के हालात का आप ही पता लग जाता है। जब तक घर से हजारों कोस दूर है तो अंदर के हालात किस तरह बतला सकेगा। ये मुनासिब है कि चंद रोज हमारे पास रहें और खास हमारे सिलसिले के मुतालिक जो इतराज़ है वो बयान करें। तुकारे जमीन रा निको साख्ती के बा आसमानी परदाख्ती। हमने बाद आदमी ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि अजी इस हजरत को जाने दो, रफा यदैन और उंगली के उठाने का फैसला करो, मगर ये अपना अपना मजाक है। नवारिस साहब की तरफ से सवाल हुआ कि साया का वजूद है कि नहीं, यानी उसकी जात है कि नहीं है। फरमाया वजूद पाई जावे, उसकी हवियत हो या ना हो। आप आईना देखते हैं, उसमें चेहरा नजर आता है, हवियत तो नहीं, यानी एक मुश्किल शय कायम बेसार। बस हवियत तो नहीं लेकिन वजूद है, वजूद और है और हवियत और है। आफ्ताब ने जहां जिल है वहां भी धूप डालती डालनी है, मगर एक चीज ने दरमियान आकर जिल पैदा कर दिया है। आफ्ताब और जिल के दरमियान जब तक ओट ना हो साया नहीं हो सकता। खैर आपको भी इस वजूदियत से कुछ मजाक है और हम आपके मजाक के खिलाफ। फिर सवाल हुआ कि कौन का इतलाक कहाँ आता है। फरमाया बात यह है कि आप कई मरतबा ख्वाबों में तरह तरह के तमसलात देखा करते होंगे और बजायर आप जानते हैं कि उनका वजूद कुछ भी नहीं। हुक्मा ने भी लिखा है, पर जिस तरह हमारे तस्वुरात होते हैं इसी तरह खुदाई सिफात में से उसके तस्वुरात भी है। बस जो तस्वुर आता है अगर इंसानी है तो वो हीच है, और अगर खुदा का है तो उसे मखलूक पैदा हो जाती है। मगर खुदा की कुना में हम दखल नहीं दे सकते। असलम तरीक यह है कि इंसान ला तुदरिकुल अफ़्फ़ार पर ईमान रखे कि मेरा मनसब नहीं कि खुदा की कुल सिफात को मैं देख लूँ और उनकी तहकीकात कर लूँ। तभी बयान करते हैं कि पानी सर्द और आग गर्म है, मगर ये नहीं बतला सकते कि पानी सर्द क्यों है और आग गर्म क्यों है। फलासफर भी जहाँ कोने अशिया में आकर आजिज रह गए हैं, यहाँ उफव्वे जो अमरी अल्लाह पर चले कि हम खुदा पर छोड़ दें। बाज अकाबिर मोहियद्दीन इब्न अरबी वगैरह की नस्बत हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि ये बहस फजूल है और बहुत अमूर मरने के बाद मालूम होंगे, और बहुत से ऐसे हैं कि मरने के बाद भी मालूम नहीं होंगे। मोहियद्दीन भी कायल हैं कि इंसान मुत्तकी हो और खुदा पर ईमान लाने वाला हो तो नजात पाएगा। 12 अक्टूबर सन 1902 बाद अदाए नमाज मगरिब हसबे मामूल हजरत अकदस अलैहिस्सलाम तानसीन पर इजलास फरमा हुए। हजरत मौलाना मौली अब्दुल करीम साहब ने शान हिंद के एडिटर का एक कार्ड सुनाया जिसमें उसने अपना एक ख्वाब लिखा था कि गोया वो कादियान आया है और हजरत अकदस को ऐसी हालत में देखा है कि सर पांव से लगा हुआ है। इस पर हजरत हुज्जतुल्लाह मसीह माऊद ने इरशाद फरमाया कि ताबीर रोया में यह साफ लिखा है कि जो लोग मामूरीन को बुरी सूरत में देखते हैं वो लोग अपनी पर्दादरी कराते हैं। मौलवी अबू यूसुफ मोहम्मद मुबारक अली साहब के वालिद मरहूम ने एक बार मुझसे जिक्र किया कि एक हिंदू उनके पास आया करता था जो इस्लाम से रगबत रखता था। कुछ अरसे के बाद वो कश्मीर से आया और उससे पूछा तो उसने कहा कि अब मैं पक्का हिंदू हो गया हूँ, लेकिन फिर अरसे के बाद जो उसको देखा तो वो ईसाई हो गया था। जब इससे वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें माजल्ला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तारीख कोहड़ी में देखा और उसमें आग जल रही थी, लानतुल्लाह अलैह। गोया खबीस ने उसको दोजख समझा और उसके गिर्द पादरियों को देखा। इससे मैंने नतीजा निकाला कि पादरी हक पर हैं और आप माजल्ला मगलूब हो रहे हैं। मौली साहब को ताबीर का इल्म न था। मुझसे जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि उसकी यही ताबीर है जो हालत इस शख्स की हुई। चुनाचे तातीरुल अनाम में ऐसे लिखा है कि जब किसी नबी मामूर और मुरसल को रद्दी हालत में देखता है, मसलन मजलूम देखता है, जब परैना देखता है, या ये कि वो बुरी गिजा खाते हैं, तो सब इसके अपने ही हालात होते हैं। अम्बिया आईना का हुक्म रखते हैं और उसके असली सूरत दिखा देते हैं। और ये बात हमारी अपनी तजर्बा करता है कि जब कोई आदमी किसी मामूर और मुरसल को बुरी हालत में देखते हैं तो जल्दी ही इनकी हालत पैदा हो जाती है और उसकी अकूबत के दिन करीब होते हैं। ये मेरे मुजरबात में से है। नवारिद मौलवी अहमद हुसैन साहब ने कहा कि मैं मक्का मौजमा में था, हाजी इमदादुल्ला साहेब से एक शख्स ने ऐसा ही कहा कि मैंने ऐसी शक्ल पर देखा, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये तुम्हारी अपनी शक्ल है। इसके बाद एडिटर अल हकम ने जलसा नदवतुल उलमा पर जो कार्रवाई थी उसका तस्करा किया, जिसको सुनकर हजरत हुज्जतुल्लाह मसीह माउद महजूज हुए। फिर मौलवी अब्दुल्ला साहेब ने सरोदात के तत्मे के तौर पर मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब का कुछ जिक्र किया और मौलवी मुबारक अली साहेब ने अपना एक वाक्य सुनाया। ये सब अमूर जलसा नदवा के मुतालिक हमारे अपने मजमून में आएंगे। जहाँ बाद मौलवी मोहम्मद अली साहेब एम ए ने ऑब्जर्वर में से पानियर का नकल किया हुआ एक मजहब नए उनवान से पढ़ा, जिसमें डॉक्टर डोई को जो दावत दी गई है उस पर रिमार्क था। फिर पार नमाज शाह इजलास खत्म हुआ। 13 अक्टूबर सन 1902 हजरत हुज्जतुल्लाह मसीह माऊद हसबे मामूल शहर को निकले। चंद आदमियों ने अपने ख्वाब सुनाए। हजूर ने फरमाया, बातिल में जो तैयारियां आपकी तरफ आने के लिए हो रही हैं उसके नज़ारे दिखाए जाते हैं। रोया का भी अजीब आलम होता है, जिन बातों का नामो निशान नहीं होता वो वजूद में लाई जाती हैं। मादूम का मौजूद और मौजूद का मादूम दिखाया जाता है और अजीब अजीब किस्म के तगयरात होते हैं। आदमी का जानवर और जानवर के आदमी दिखाए जाते हैं। फरमाया, हमारे मौजूदा मुखालिफों और 10 बरस पहले के मुखालिफों में बहुत फर्क हो गया है। पहले तो अपने अकीदों को सच्चे ही समझते थे, मगर आप सिर्फ निफाक से कहते हैं जो कहते हैं, वरना इन अकायद की गलतियों को दिल में तस्लीम कर चुके हैं। जहादू बिहा वस्तैखनतहा अनफुसहुम, अनम आयत 15। एक शख्स जो अपने तय सच्चा समझता है वो खुदा ताला पर भरोसा करता है, मगर आप ये भरोसा नहीं कर सकते, और इसलिए अगर खाक कई हजार रुपए का इश्तहार दिया जाए ये अपने आप को मत मुकाबल होकर निशाना ना बनाएंगे। मुखालिफों की कमी और अपने रोज़ तरक्की पर हज़रत अक़दस ने फरमाया, ये फ़ौक़ुल्आदा तरक्की ना हो अगर तगैयर वाक़िया ना हुआ हो। उनका खजाना कम हो रहा है और हमारा बढ़ रहा है। अगर उनके पास अपनी सच्चाई के दलायल हैं तो ये लोगों को रोक लें। अगर कोई बड़ा सैलाब आया हुआ हो और किसी का घर तबाह हो रहा हो और उसके पास सामान भी हो, तो क्या वो उसको रोकने की सही नहीं करेगा? हमारे पास जो हर रोज बैत के लिए आते हैं उनमें से ही आते हैं, आसमान से तो नहीं आते। जमात की तरक्की पर और मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी के अभी 313 ही कहते रहने पर इरशाद फरमाया, बड़े जोर से तरक्की हो रही है, क्या वो नहीं जानता कि खुदा कादिर है कि एकदम में 313 से 3,13,000 कर दे। ये तरक्की मौलवी मोहम्मद हुसैन के लिए तो एजाज है, अगर वो सोचे और समझे, ब्रैन एमजे को पढ़े। ये किताब मैंने अब तो नहीं बना ली जिसमें लिखा हुआ है कि 13 साल पहुंची होंगी। बावजूद मौलवियों की इस कदर मुखालफत के फिर इस कौम का तरक्की करना क्या यह मौजूदा नहीं है? जबकि वो अपने इरादों में आजिज आ गए। किस कदर जिद्दोजहद इन लोगों ने हमारे नाबूद करने के लिए की। गवर्नमेंट तक से चाह कर किसी न किसी तरह से हमको फंसाए, मगर खुदा ताला ने ऐसी जोर शोर से तरक्की की, जिस कदर जोर उन्होंने मुखालफत में लगाया, अब तो बात साफ हो गई है। मर्दम शुमारी के कागजात से साफ मालूम हो जाता है कि हमारी जमात 313 है, ये 1 लाख के करीब है। ताऊ ने उनको दो तरह घटाया है, कुछ मरते हैं और अक्सर अक्सरों को इधर मिलाया है। असल यह है कि जो बीज अच्छी तरह बोया जावे और वक्त पर बारिश भी हो, वो देखते ही देखते نشو و نما پاتا اور ترقی کرتا ہے. دلوں کو کھینچنا اور قائم رکھنا یہ خدا کا کام ہے. ان مخالفوں کو اگر آپ ابو سفیان کی طرح نظارہ کرایا جاوے تو حیران ہو جائیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنی فوج دکھائی اور عباس کو کہا کہ ان کے پاس تیر کر دکھاؤ, اور جب اس نے وہ نظارہ دیکھا تو اس نے کہا کہ تیرا بھتیجا بڑا بادشاہ ہو گیا ہے, مگر اس کو جواب دیا گیا کہ بادشاہی نہیں نبوت ہے. برائے احمدیہ کے زمانے پر غور کیا جاوے, جب وہ چھپ رہی تھی, اب تو نہیں بنائی گئی, اس وقت کے علامات اس میں درج ہیں جو انگریزی میں بھی ہیں اور عربی میں بھی. اذا جا نصر اللہ والفتح وانتا امر الزمان الینا لیس ہذا بالحق, ایک مخلوق ہماری طرف رجوع کرے گی تو کہا جائے گا لیس ہذا بالحق وانتا امر الزمان الینا. عربی میں بڑا عجیب فقرہ کہ زمانہ کا رجوع ہماری طرف ہوگا اور آخری فیصلہ ہماری ہاتھ میں ہوگا. غرض بڑی بڑی پیشگوئیاں ہیں, جیسے یہ کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ملوک کو بھی اس طرف توجہ ہوگی اور ان میں بھی اس سلسلے کی اشاعت ہوگی. ملوک اور رؤساء کے کان اب کے سننے سے بہرے ہوتے ہیں, نہ خود ان کو عادت ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس والے ایسے ہوتے ہیں. ان کے مصائب اور پاس رہنے والے بدوضع لوگ ہوتے ہیں, مگر خدا تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. یہ برکت ڈھونڈنے والے بیعت میں داخل ہوں گے, اور ان کے بیعت میں داخل ہونے سے گویا سلطنت بھی اس قوم کی ہوگی. پھر مجھے کشفی رنگ میں وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے. وہ گھوڑوں پر سوار تھے اور 6-7 سے کم نہ تھے. اصل یہ ہے کہ خدا کے کام تدریجی ہوتے ہیں. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں میں تکلیف اٹھاتے پھرتے تھے, اس وقت کون خیال کر سکتا تھا کہ اس شخص کا مذہب دنیا میں پھیل جائے گا. علم خدا تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم کا دائرہ بھی اشاعت اسلام کے متعلق اتنا نہ تھا جتنا اب ہے. وہ تو یقین کرتے تھے کہ ہم فتح پائیں گے. میرا مذہب تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہی عالم و خبیر ہے. ضروری نہیں کہ پیغمبروں پر بھی تفصیلی حالات ظاہر کیا جائیں. وہ جتنا علم چاہتا ہے دیتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت آئیں تو اسلام کی اس قدر وسیع اشاعت اور ترقی کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. حضرت اقدس علیہ السلام نے اپنے تائیدی ثبوتوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اب وہ اس کثرت سے ہو گئے ہیں کہ گنے بھی نہیں جاتے. ہر روز زیادتی ہوتی رہتی ہے. یہ خدا کا کلام ہے. مجھے بارہا خیال آیا ہے کہ اگر کسی رئیس کو یہ خیال پیدا ہو تو جس ترتیب سے خدا تعالیٰ نے اس سلسلے کی سچائی کو ظاہر کیا ہے وہ ایک جلسہ کر کے اس ثبوت کو ہم سے لے. یہ ثبوت 4 قسم کے ہیں اگر عقل کو بھی اس میں داخل کر لیا جائے. نمبر 1 نصوص قرآنیہ و حدیثیہ. نمبر 2 آیات ارضیہ و سماویہ. نمبر 3 ضرورت مشہودہ و محسوسہ. نمبر 4 دلائل عقلیہ. اس ترتیب سے اگر عیسائیوں کے اس جلسے کی طرح جو 15 دن تک امرتسر میں ہوتا رہا تھا ایک جلسہ کیا جاوے, اور قیصر صوم کی طرح جس نے ایک مذہبی جلسہ کیا تھا مذہب کی تحقیقات کے لحاظ سے نہ صحیح بطور تماشا ہی کوئی کر کے دیکھے, اس طرح پر آہستگی سے منہاج نبوت پر ہمارے ثبوت سن لیے جاویں تو بہت بڑا مفید نتیجہ نکلے. بے شک جس طریق پر حضرت موسیٰ کی نبوت یا حضرت عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کی نبوت ثابت ہوتی ہے اس سلسلے کو پرکھا جاوے. ایک بار حضرت اقدس نے پیشگوئیوں کے نقشے کی تیاری کا حکم دیا تھا, پھر وہ نقشہ تیار ہوا اور اس کے متعلق یاد دہانی کرائی گئی تو حضور نے فرمایا وہ پیشگوئیاں اب نزول المسیح میں چھپ رہی ہیں, ان کی عبارات کا چست کرنا بھی ضروری تھا, اب اس سے نقشہ بھی مرتب ہو سکتا ہے. آتم کی پیشگوئی کے متعلق ذکر کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ ہماری جماعت کو یہ مسائل مستاضر ہونے چاہیے. آتم کے رجوع کے متعلق یاد رہے کہ پیشگوئی سنتے ہی اس نے اپنی زبان نکالی اور کانوں پر ہاتھ رکھا اور کانپا اور زرد ہو گیا. ایک جماعت کثیر کے سامنے اس کا یہ رجوع دیکھا گیا, پھر اس پر خوف غالب ہوا اور وہ شہر بشہر بھاگتا پھرا. اس نے اپنی مخالفت کو چھوڑ دیا اور کبھی اسلام کے مخالف کوئی تاریخ شائع نہ کی. جب انعامی شہادت دے کر قسم کے لیے بلایا گیا تو وہ قسم کھانے کو نہ آیا. اخوائے شہادت حقا کی پاداش میں اس پیشگوئی کے موافق جو اس کے حق میں کی گئی تھی وہ ہلاک ہو گیا. یہ باتیں اگر عیسائی منصف مزاج کے سامنے پیش کی جائیں تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. गरज इस तरह पर मसाइल को याद रखना एक फर्ज है और किताबों का देखना एक जरूरी अमर होता है। रफा के मुतालिक जो एतराज करते हैं, इसके लिए ये समझना चाहिए कि रफा से यहूदी तो यही माने समझे हुए थे कि जिस पर लानत पड़े उसका रूह आसमान पर नहीं जाता। उनका ये मजहब कब था कि नजात के लिए आसमान पर जाना जरूरी है। बस यहूदियों की असल गरज मसीह को सलीब देने से ये थी। बस यहूदियों की असल गरज मसीह को सलीब देने से ये थी। उनके जिस्म से उनको क्या काम था। अल्लाह ताला को भी इसी इख्तिलाफ का रफा करना और उनकी गलत फहमी को रफा करना मकसूद था। अब अगर रफा से जिस्मानी मुराद है तो यहूदियों के इस इल्जाम की बरियत कहाँ है। इस तरह पर हर किस्म के इतराजों के जवाब पहाड़ों की तरह याद होना चाहिए। मुस्तादर जवाब देना हर एक का काम नहीं। अगर पक्का जवाब ना हो तो उजरे नामाकूल साबित में कुनद इल्जाम रहा का मामला होता है। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले की सच्चाई के तो ऐसे दलायल दिए हैं कि अगर याद हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं। मेरा इरादा है कि इस किताब के बाद फिर इम्तिहान की सूरत रखी जावे। रऊ साहब में से किसी को ख्याल आवे कि इस्लाम में फूट पड़ रही है और वे इस काम को अपने जिम्मे ले और एक जलसा करके फैसला कर ले। फिर फरमाया, ताउन के मुतालिक सारे नबी पेशगोई करते आए हैं कि मसीह माऊत के वक्त में ताउन शिद्दत से फैलेगी। 13 अक्टूबर सन 1902। 1902 में नदवतुल उलमा का सालाना जलसा बमकाम अमृतसर हुआ था। इस जलसे पर हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपने रसूल बगर्ज तबलीग भेजे थे। 13 अक्टूबर को जलसे से वापस आने पर बाज़ और लोग भी दारुल अमान आए। सिलसिले कलाम में नदवा के मुतालिक जिक्र आया कि वो बहस मुबहसे से अलग रहकर इस्लाह चाहते हैं। इस पर हजरत अख्तस ने इरशाद फरमाया, अगर नदवा का दावा इस्लाह है तो अमरे तनकी तलब यह है कि इस्लाह किस तरह हो सकती है और किन राहों से हो रही है और इस्लाम पर क्या हमला हो रहा है। इसके मुदाफत और इंसदाद की तदाबीर का सवाल बेमहल और ऐसा दावा ख्याली दावा होगा। फिर काबिले गौर अम्र यह है कि इन सारी खराबियों का इंसदाद अर्जी ताकत से हो सकता है या आसमानी ताजात से। अगर नदवा वाले चाहते हैं कि लोग पढ़कर यानी अंग्रेजी तालीम हासिल करके नौकर हो जाएं और उनको मुलाजमत के लिए आसानियां हों तो यह दीन का काम नहीं है। ये तो कौम को गुलाम बनाने की तदाबीर है। और अगर उनकी गरज दीनी इसलाह है तो फिर याद रखें, खुदारा बखुदा तो शनाख। इस असल को छोड़कर जो शख्स चाहता है कि दीनी इसलाह हो जावे वो कभी इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। इस खुश्क और ख्याली इसलाह से क्या फायदा होगा जिसके साथ खुदा ताला की ताईदें और नुसरतें नहीं हैं। वो बातें जो निरी लफाजे के तौर पर बयान की जावें या किस्सा और कहानी की तरह गुज़श्ता अमूर पर जिसका हवाला हो, उनकी पहले से क्या कमी है जो एक खास जमात अपना वक्त और गरीब मुसलमानों को रुपया लेकर सरफ करे और नतीजा कुछ भी ना हो। मैं इस किस्म की कार्रवाइयों को रियाकारी और निफाक की बू आती है, क्योंकि ये तरीक उस मतलब और गर्ज के हसूल से कोसों दूर है जिसके लिए इंसान पैदा किया गया है और जिस तरह दुनिया की इसलाह हुआ करती है वो रंग इसमें मौजूद नहीं है। इसलाह का तरीक हमेशा वही मुफीद और नतीजा खेज साबित हुआ है जो अल्लाह ताला के इज्न और ईमा से हो। अगर हर शख्स की ख्याली तजवीजों और मंसूबों से बिगड़ी ही कौमों की इसलाह हो सकती तो फिर दुनिया में अम्बिया अलैहिस्सलाम के वजूद की कुछ हाजत न रहती। जब तक कामिल तौर पर एक मर्द की तशखीस ना हो और फिर पूरे वसूख के साथ उसका इलाज मालूम ना हो ले, कामयाबी इलाज में नहीं हो सकती। इस्लाम की जो हालत नाजुक हो रही है वो ऐसे तबीबों की वजह से हो रही है जिन्होंने इसकी मर्ज को तो तशखीस नहीं किया और जो इलाज अपने ख्याल में गुजरा अपने मफाद को मद्देनजर रखकर शुरू कर दिया। मगर यकीनन याद रखो कि इस मर्ज और इलाज से ये लोग माज ना वाकिफ हैं। उसको वही शनाख्त करता है जिसको खुदा ताला ने इस गर्ज के लिए भेजा है और वो मैं हूं। फरमाया, इस्लाम के अंदर एक खतरनाक फोड़ा हो गया है और एक जजाम बाहर की तरफ से उसे लग रहा है। अंदरूनी फोड़े का बायस खुद मुसलमान हुए जिन्होंने आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक तालीमात और उसवाए हसना को छोड़कर अपनी तजवीज और राय के मुताबिक इसमें इसलाह और तरमीम शुरू कर दी। वो बातें जो कभी आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहम गुमान में भी ना आई थी आज इबादत करार दी गई हैं और जोद और रियाजत का बहुत बड़ा मदार उन्हीं पर रखा गया है। इन बातों को देखकर बिरूनी दुश्मनों को भी मौका मिला और वो तीरो तफंग लेकर इस्लाम पर हमलावर हुए और इसके पाक वजूद को छलनी कर दिया और इसे ऐसी मकरूह हैत में दुनिया के ऐसे मकरूह हैत में दुश्मनों ने दिखाना शुरू कर दिया कि गैर तो गैर थे ही अपनों को भी मुतनफिर कर दिया। हर शख्स ने अपनी तर्ज पर उसकी तस्वीर को भयानक बनाने की फिक्र की। ऐसी सूरत में जमीनी हरबा और अर्जी तदाबीर काम नहीं दे सकती हैं, इसके लिए आसमानी हरबा और आसमानी तदाबीर की हाजत है। इसलिए जब तक आसमानी कशश और आसमानी तादाद किसी को न दी जावे, कामयाबी नहीं हो सकती। जरूरत है अंबिया के यही बड़ा भारी सबूत है, क्योंकि अगर बिगड़े वक्त इस्लाह दुनिया हो सकती है तो दुनिया तो हर जमाने में फिलासफर और दानिशमंद मुदब्बिर होते रहे हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के जमाने में भी ऐसे लोग हो गुजरे हैं, अब भी मौजूद हैं, लेकिन वो फिलासफर और रिफारबर खुदा ताला से इस कदर दूर जा पड़े हैं कि उनके नजदीक शायद खुदा ताला का नाम लेना भी एक गुनाह और गलती करार दिया गया है। फिर बताओ कि ये फलसफा और ये इस्लाह तुम्हें कहाँ तक ले जाएगी? इससे किसी बेहतरी की उम्मीद रखना खतरनाक गलती है। क्या तुम नहीं देखते कि खुदा ताला ने यही सुन्नत रखी है कि इस्लाह के वास्ते नबियों को मामूर करके भेजा है? अम्बिया अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो बज़ाहिर दुनिया में एक फसाद अजीम नजर आता है, भाई भाई से, बाप बेटे से जुदा हो जाता है, हजारों हजार जाने भी तल्फ हो जाती हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त तूफान से उनके मुखालिफों को तबाह कर दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त और दूसरे कई अजाब वाले हुए और फिरौन के लश्कर को गर्क किया गया। गरज खूब याद रखो कि कुलूब की इसलाह उसी का काम है जिसने कुलूब को पैदा किया है। निरे कलेमात और चरब जबानियां इसलाह नहीं कर सकती, बल्कि उन कलेमात के अंदर एक रूह होनी चाहिए। बस जिस शख्स ने कुरान शरीफ को पढ़ा और उसने इतना भी नहीं समझा कि हिदायत आसमान से आती है तो उसने क्या समझा? अलम यातिकुम नजीर का जब सवाल होगा तो पता लगेगा। असल बात यह है, खुदा रब खुदा तो आसना, और ये जरिया बगैर इमाम नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुदा ताला के ताजा बताजा निशानों का मजर और उसकी तजल्लियात का मौरद होता है। यही वजह है कि हदीस शरीफ में आया है, मन लम यारिफ इमाम जमान ही फकत माता मीतल जाहिरिया। 14 अक्टूबर सन 1902 दरबार शाम, मौलवी सैयद महमूद शाह साहब ने जो सहारनपुर से तशरीफ लाए हुए थे, हज़रत अक़दस इमाम अलैहिस्सलाम के हुजूर, जब आप नमाज मगरिब से फारिग होकर शहनशीन पर इजलास फरमा हुए, ये अर्ज़ किया कि मैंने आज तोहफ़े गोलड़विया और कश्तीनों के बाद मकामात पड़े हैं, मैं एक अम्र जनाब से दरियाफ्त करना चाहता हूँ, अगरचे वो फरोई है लेकिन पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम लोग अमूमन बाद नमाज दुआ मांगते हैं, लेकिन यहाँ नवाफिल तो खैर दुआ बाद नमाज नहीं मांगते। इस पर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, असल बात यह है कि हम दुआ मांगने से तो मना नहीं करते और हम खुद भी दुआ मांगते हैं, और सलात बजाय खुद दुआ ही है। बात यह है कि मैंने अपनी जमात को नसीहत की है कि हिंदुस्तान में ये आम बिदत फैली हुई है कि तादील अरकान पूरे तौर पर मलहूज नहीं रखते और ठूंगेदार नमाज पढ़ते हैं, गोया वो नमाज एक टैक्स है जिसका अदा करना एक बोझ है, इसलिए इस तरीक़े से अदा किया जाता है जिसमें कराहत पाई जाती है। हालांकि नमाज ऐसी शय है कि जिससे एक ज़ौक उन्स और सुरूर बढ़ता है, मगर जिस तरीक पर नमाज अदा की जाती है इससे हुजूर कल्ब नहीं होता और बेज़ौकी और बेलुत्फी पैदा होती है। मैंने अपनी जमात को यही नसीहत की है कि वह बेज़ौकी और बेहजूरी पैदा करने वाली नमाज न पढ़ें, बल्कि हुजूर कल्ब की कोशिश करें जिससे उनको सुरूर और ज़ौक हासिल हो। आमतौर पर ये हालत हो रही है कि नमाज को ऐसे तौर से पढ़ते हैं कि जिसमें हुजूर कल्ब की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि जल्दी जल्दी उसको ख़त्म किया जाता है, और खारिज नमाज में बहुत कुछ दुआ के लिए करते हैं और देर तक दुआ मांगते रहते हैं। हालांकि नमाज का जो मोमिन के मेराज है, मकसूद यही है कि इसमें दुआ की जाए, और इसीलिए उमुल अदिया एहदिन सिरात अलमुस्तकीम दुआ मांगी जाती है। इंसान कभी खुदा ताला का कुर्ब हासिल नहीं करता जब तक के इकाम उस्सलात न करे। अकीम उस्सलात इसलिए फरमाया कि नमाज गिरी पड़ती है, मगर जो शख्स इकामुस सलात करते हैं तो वो उसके रूहानी सूरत से फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर वो दुआ की महवियत में हो जाते हैं। नमाज एक शरबत है कि जो एक बार उसे पी ले उसे फुर्सत ही नहीं होती और वो फारिग नहीं हो सकता, हमेशा उसे सरशार और मस्त रहता है। इससे ऐसी ही माहवियत होती है कि अगर सारी उम्र में एक बार भी उसे चखता है तो फिर उसका असर नहीं जाता। मोमिन को हमेशा उठते बैठते हर वक्त दुआएं करनी चाहिए, मगर नमाज के बाद जो दुआओं का तरीक इस मुल्क में जारी है वो अजीब है। बाद मसाजिद में इतनी लंबी दुआएं की जाती हैं कि आध मील का सफर एक आदमी कर सकता है। मैंने अपनी जमात को बहुत नसीहत की है कि अपनी नमाज को संवारो, ये भी दुआ है। क्या वजह है कि बाज लोग 30-30 बरस तक बराबर नमाज पढ़ते हैं फिर कोरे के कोरे ही रहते हैं, कोई असर रूहानियत और खुशू खुजू का उनमें पैदा नहीं होता। इसका यही सबब है कि वो नमाज पढ़ते हैं जिस पर खुदा ताला लानत भेजता है। ऐसे नमाजों के लिए वैल आया है, देखो जिसके पास आला दर्जे का जौहर हो तो क्या कोड़ियों और पैसों के लिए उसे फेंक देना चाहिए? हरगिज नहीं, अव्वल जौहर की हिफाजत का एहतमाम करे और फिर पैसों को भी संभाले। इसलिए नमाज को संवार संवार कर और समझ समझ कर पढ़े। साहिल ने अर्ज किया, अलहम शरीफ बेशक दुआ है, मगर जिनको अरबी का इल्म नहीं उनको तो दुआ मांगनी चाहिए। हजरत अकदस ने इस पे फरमाया, हमने अपनी जमात को कहा हुआ है कि तोते की तरह मत पढ़ो, सवाए कुरान शरीफ के जो रब्बे जलील का कलाम है और सवाए अदिया मासूरा के जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल थी। नमाज बाबरकत ना होगी जब तक अपनी जुबान में अपने मतालब बयान ना करो। इसलिए हर शख्स को जो अरबी जुबान नहीं जानता जरूरी है कि अपनी जुबान में अपनी दुआओं को पेश करे और रुकू में सजूद में मसनून तस्बीहों के बाद अपनी हाजात को अर्ज करे, ऐसे ही अत्तहियात में और क्याम और जलसा में। इसलिए मेरी जमात के लोग इस तालीम के मुआफिक नमाज के अंदर अपनी जुबान में दुआएं कर लेते हैं और हम भी कर लेते हैं, अगरचे हमें तो अरबी और पंजाबी यकसाई है मगर मादरी जुबान के साथ इंसान को एक जौक होता है। इसलिए अपनी जुबान में नहायत खुशू और खुजू के साथ अपने मतालिब और मकासिद को बारगाह रब इज़्ज़त में अर्ज करना चाहिए। मैंने बारहा समझाया है कि नमाज के तहत करो जैसे हुजूर लेते हैं, बाकी नवाफिल और सुनन को जैसा चाहो तूल दो और चाहिए कि इसमें गिरिया और बुका हो ताकि वो हालत पैदा हो जावे जो नमाज का असल मतलब है। नमाज ऐसी शय है कि सैयाद को दूर कर देती है, जैसे फरमाया इन्नल हसनात युजहिबन सैयाद सूरह हूद आयत 115। नमाज कुल बदियों को दूर कर देती है, हसनात से मुराद नमाज है, मगर आजकल ये हालत हो रही है कि आमतौर पर नमाजी को मक्कार समझा जाता है, क्योंकि आम लोग भी जानते हैं कि ये लोग जो नमाज पढ़ते हैं ये उसी किस्म के हैं जिस पर खुदा ने वावेला किया है, क्योंकि उसका कोई नेक असर और नेक नतीजा मुतरतिब नहीं होता। निरे अल्फाज की बहस मैं पसंद नहीं करता, आखिर मरकर खुदा ताला के हजूर जाना है। देखो एक मरीज जो तबीब के पास जाता है और उसका नुस्खा इस्तेमाल करता है, अगर 10-20 दिन तक इससे कोई फायदा ना हो तो वो समझता है कि तशखीस या इलाज में कोई गलती है। फिर ये क्या अंधेर है कि साल हर साल से नमाजें पढ़ते हैं और उसका कोई असर महसूस और मशहूद नहीं होता। मेरा तो यह मजहब है कि अगर 10 दिन भी नमाज को संवार कर पढ़ें तो तनवीर कल्ब हो जाती है, मगर यहाँ तो 50-50 बरस तक नमाज पढ़ने वाले देखे गए हैं कि बदस्तूर रू बदुनिया और सिफली जिंदगी में नगुनसार हैं और उन्हें नहीं मालूम कि वह नमाजों में क्या पढ़ते हैं और इस्तिग़फ़ार क्या चीज़ है, इसके मानों पर भी उन्हें इतला नहीं है। तबीयतें दो किस्म की हैं, एक वो जो आदत पसंद होती हैं, जैसे अगर हिंदू का किसी मुसलमान के साथ कपड़ा भी छू जाए तो वो अपना खाना फेंक देता है हालांकि इस खाने में मुसलमान का कोई असर सरायत नहीं कर गया। ज्यादातर इस जमाने में लोगों का यही हाल हो रहा है कि आदत और रस्म के पाबंद हैं और हकीकत से वाकिफ और आशना नहीं है। जो शख्स दिल में यह ख्याल करे कि यह बिदत है कि नमाज के पीछे दुआ नहीं मांगते बल्कि नमाजों में दुआएं करते हैं, ये बिदत नहीं। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदिया अरबी में सिखाई थी जो उन लोगों की अपनी मादरी जुबान थी, इसीलिए उनकी तरक्यात जल्दी हुई, लेकिन जब दूसरे ममालिक में इस्लाम फैला तो वो तरक्की ना रही। इसकी यही वजह थी कि आमाल रस्म आदत के तौर पर रह गए, उनके नीचे जो हकीकत और मकसद था वो निकल गया। अब देख लो मसलन एक अफगान नमाज तो पढ़ता है लेकिन वो असर नमाज से बिल्कुल बेखबर है। याद रखो, रस्म और चीज है और सलात और चीज। सलात ऐसी चीज है कि इससे बढ़कर अल्लाह ताला से कुर्ब का कोई करीब जरिया नहीं, यह कुर्ब की कुंजी है। इसी से कुसूफ होते हैं, इसी से इल्हामात और मुकालमात होते हैं, ये दुआओं के कबूल होने का एक जरिया है। लेकिन अगर कोई इसको अच्छी तरह समझ कर अदा नहीं करता तो वो रस्म और आदत का पाबंद है और इससे प्यार करता है। जैसे हिंदू गंगा से प्यार करते हैं, हम दुआओं से इनकार नहीं करते, हम दुआओं से इनकार नहीं करते, बल्कि हमारा तो सबसे बढ़कर दुआओं की कबूलियत पर ईमान है, जबकि खुदा ताला ने उदऊनी अस्तजीब लकुम फरमाया है। हाँ, ये सच है कि खुदा ताला ने नमाज के बाद दुआ करना फर्ज नहीं ठहराया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इल्तजामी तौर पर मसनून नहीं है, आपसे इल्तजाम साबित नहीं है। अगर इल्तजाम होता और फिर कोई तरक करता तो यह मासियत होती। तकाज़ाए वक्त पर आपने खास नमाज में भी दुआ कर ली, और हमारा तो यह ईमान है कि आपका सारे वक्त दुआओं में गुजरता था। लेकिन नमाज खास खजीना दुआओं का है जो मोमिन को दिया गया है, इसलिए उसका फर्ज है कि जब तक उसको दुरुस्त ना करे और उसकी तरफ तवज्जो ना करे, क्योंकि जब नफल से फर्ज जाता रहे तो फर्ज को मुकदम करना चाहिए। अगर कोई शख्स जौक और हुजूर कल्ब के साथ नमाज पढ़ता है तो फिर खारिज नमाज बेशक दुआ करे, हम मना नहीं करते। हम तकदीम नमाज चाहते हैं और यही हमारी गर्ज है, मगर लोग आजकल नमाज की कदर नहीं करते, और यही वजह है कि खुदा ताला से बहुत बोझ हो गया। मोमिन के लिए नमाज मेराज है, और वह इससे ही इत्मीनान कल्ब पाता है, क्योंकि नमाज में अल्लाह ताला के हम और अपनी अबूदियत का इकरार, इस्तिगफार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद, गरज वो सब अमूर जो रूहानी तरक्की के लिए जरूरी है मौजूद हैं। हमारे दिल में इसके मुतालिक बहुत सी बातें हैं जिनको अल्फाज पूरे तौर पर अदा नहीं कर सकते। बात समझ लेते हैं और बात रह जाते हैं, मगर हमारा काम यह है कि हम थकते नहीं, कहते जाते हैं। जो शहीद होते हैं और जिनको फरासत दी गई है वो समझ लेते हैं। शायद एक शख्स ने रिसाला लिखा था कि सारी नमाज अपनी जुबान में पढ़नी चाहिए। इस पर हजरत अक्दस ने फरमाया, वो और तरीक होगा जिससे हम मुत्तफिक नहीं। कुरान शरीफ बाबरकत किताब है और रब जलील का कलाम है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हमने तो इन लोगों के लिए दुआओं के वास्ते कहा है जो उम्मी हैं और पूरे तौर पर अपने मकासिद अर्ज नहीं कर सकते। उनको चाहिए कि अपनी जुबान में दुआ कर लें। इन लोगों की हालत तो यहां तक पहुंची हुई है कि मुझे मालूम है कि फतेह मोहम्मद एक शख्स था, उसकी चची बहुत बुढ़ी हो गई थी। उसने कलमा के मैंने पूछे तो उसको क्या मालूम था कि क्या है, उसने बताया तो उस औरत ने पूछा कि मोहम्मद मर्द था या औरत थी। जब उसको बताया गया कि वह मर्द था तो वह हैरतजदा होकर कहने लगी कि फिर क्या मैं इतनी उम्र तक बेगाने मर्द ही का नाम लेती रही। ये हालत मुसलमानों की हो गई है। हजरत हुजतुल्लाह ये तकरीर खत्म कर चुके तो मौलाना सैयद मोहम्मद आसम साहेब फाजिल अमरोही ने मुस्तफसर को मुखातिब करके फरमाया कि साहेब सफर सआदत ने तो यहां तक लिखा है के नमाज के बाद दुआ की हदीस साबित नहीं। इस पर हजरत अक्दस ने सिलसिला कलाम यूं शुरू किया, मेरा मजहब है कि हदीस की बड़ी तादीम करनी चाहिए, क्योंकि ये हदीस आ हजरत से मंसूब है। जब तक कुरान शरीफ से मुतारिज ना हो, मुस्तासन यही है कि इस पर अमल किया जावे, मगर नमाज के बाद दुआ के मुतालिक हदीस से इल्तजाम साबित नहीं। हमारा तो ये असूल है कि जयीफ से जयीफ हदीस पर अमल किया जावे जो कुरान शरीफ के मुखालिफ ना हो। इसके बाद दो तीन अशखास ने बैत की दरख्वास्त की और हजूर ने बैत में उन्हें दाखिल। मौलाना मौलवी मोहम्मद अली साहेब MA ने मिस्टर पिगट और फ्रांस के एक जदीद मुद्दई मसीहत के मुतालिक विलायत के अखबार फ्री थिंकर से दो नोट पढ़कर सुनाए, और मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहेब ने डॉक्टर डोई के अखबार के बाद पैराग्राफ सुनाए। डोई के जिक्र पर हजरत अकदस मसीह मऊद ने इरशाद फरमाया, ये वो शख्स है जिसने इलियास होने का दावा किया है और अपने आप को ऐदनामे का रसूल कहता है। हमने उसको दावत की है कि अगर तू यीशु मसीह को खुदा समझता है तो मैं सच कहता हूँ कि मैं खुदा की तरफ से मसीह माऊद होकर आया हूँ। बस तू इस कसम की दुआ कर कि हम दोनों में से जो काजिब है वो पहले हलाक हो। ये जोश मुझे ज्यादा इसलिए आया है कि उसने तमाम मुसलमानों के हलाक होने की पेशगोई की है। यह शख्स इस्लाम का बड़ा दुश्मन है। ये जमाना इस किस्म का आया है कि अल्लाह ताला ने ऐसे वसायल पैदा कर दिए हैं कि दुनिया एक शहर का हुक्म रखती है, और वैजन नफूस व जुवेजत अत तकवीज आयत 8 की पेशगोई पूरी हो गई है। अब सब मजाहब मैदान में निकल आए हैं, और ये जरूरी अम्र है कि उनका मुकाबला हो, और उनमें एक ही सच्चा होगा और गालिब आएगा। लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले में इसकी तरफ इशारा है। ये मुकाबला मजाहब का शुरू हो गया है, और इस मजहबी कुश्ती का सिलसिला निरी जुबान तक ही नहीं रहा, बल्कि कलम ने इसमें से सबसे बढ़कर हिस्सा लिया है। लाखों मजहबी रिसाले शाये हो रहे हैं इस वक्त। मुख्तलिफ मजाहब, खसूस नसारा के जो हमले इस्लाम पर हो रहे हैं, जो शख्स इन हालात से वाकफियत रखता है और उसे उन पर सोचने का मौका मिला है, तो वो इन ज़रूरतों को देख कर बेख्तियार होकर इस बात को तस्लीम करता है कि ये वक्त है कि खुदा ताला अपने इस्लाम की तरफ तवज्जो करे। जो शख्स इस्लाम पर इन हमलों की रफ्तार को देखता है, तो ये ज़रूरत को महसूस करता है, लेकिन जिसको कोई खबर ही नहीं है, वह इन नुकसानों के बाबत क्या कह सकता है जो इस्लाम को पहुँचाए गए हैं। मुसलमानों ने नादान दोस्त के रंग में, और गैर मजाहब वालों खूसन ईसाइयों ने दुश्मनी के लिबास में, वो तो यही कहता है कि इस्लाम का क्या बिगड़ा है, मगर इसे मालूम नहीं कि इस्लाम के ज़ाहरी और जिस्मानी सूरत में भी ज़ोफ़ आ गया है। वो कुव्वत और शौकत इस्लामी सल्तनत को नहीं, और दीनी तौर पर यही वो बात जो मुखलसीन लहुद्दीन में सिखाई गई थी, उसका नमूना नज़र नहीं आता। अंदरूनी तौर पर इस्लाम की हालत बहुत ज़यीफ़ हो गई है, और बैरूनी हमलावर चाहते हैं कि इस्लाम को नाबूद कर दें। उनके नज़दीक मुसलमान कुत्तों और खंजीरों से बदतर हैं। उनकी गरज और इरादे यही हैं कि वह इस्लाम को तबाह कर दें और मुसलमानों को हलाक करें। अगर एक सच्चे मुसलमान को इन इरादों पर इत्तला मिले जो ये लोग इस्लाम के खिलाफ कहते हैं, तो मैं सच कहता हूँ कि वह उनके तसव्वुर के सदमे ही से मर जावे। अब खुदा की किताब के बगैर और उसकी तायीद और रोशन निशानों के सिवा उनका मुकाबला मुमकिन नहीं, और इसी गरज के लिए खुदा कायम किया है। फरमाया, दज्जाल भी किताब ही को पैरो होना चाहिए। ये तारीफ करते हैं, पहले हाशिया पर लिखते हैं, फिर इन मतालिब को मदन में दाखिल करते हैं, और इस तरह पर आए दिन उनकी तारीफ का सिलसिला जारी रहता है। दुनिया की कोई जुबान ऐसी नहीं जिसमें उन्होंने अंजील का तर्जमा नहीं किया और अपने बातिल अकीदों की इशाअत नहीं की। उन्होंने अपनी तहरीरों और रिसालों के जरिए बहुत बड़ी खबासत और गंद को फैलाया है। उनकी नीयतें इस्लाम के लिए हरगिज बखैर नहीं हैं। आदम से लेकर इस वक्त तक ऐसे मुगवी और मुजिल पैदा नहीं हुए जैसे कि ये कौम है। रुपया, कुव्वत, शौकत जो आज उनको मिला है और किसी को नहीं। मैं पूछता हूँ कि यह कौम इस्लाम के मादूम करने में किस कदर कोशिश करती है, और क्या क्या तरीके उन्होंने इख्तियार किए हैं, और अपने इरादों और कोशिशों में कहाँ तक कामयाबी उसने हासिल की है। अब इस सवाल का जवाब सोचकर हमें बताया कि ये जब ये अजीम शान फितना और इस्लाम के लिए दुश्मन है, तो फिर उसकी पेशगोई भी तो ज़रूर होनी चाहिए थी। फिर वो कहाँ है? कुरान शरीफ में वलद ज़ालिन तो कहा, अगर दज्जाल कोई अलग चीज़ थी तो चाहिए था वलद दज्जाल भी कहा होता। गैर मग़लूब और वलद ज़ालिन के मुतालिक तमाम मुफस्सिर मुतफ़िक़ हैं कि इनसे यहूदी और ईसाई मुराद हैं। जब 5 वक्त नमाजों में इन फितनों से बचने के लिए दुआ की तालीम की गई है कि ज़ालिन से न करना और ना मग़लूब कौम से बनाना, तो साफ मालूम होता है कि सबसे बड़ा और अहम फितना यही था जो उम्मुल फितन कहना चाहिए। और बातों को जाने दो, वाकयात भी तो कुछ चीज़ हैं। मुतशाबियात की बहस में न पड़ो, मगर यह तो मानना ही पड़ेगा कि पेशगोइयों के वो माने होते हैं जो वाकयात के रूप से सही साबित हो जाएं। अब 1300 बरस गुजर गए, और मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक है कि कोई कश्फ और इल्हाम 14वीं सदी से आगे नहीं जाता। सब गोया बिल इत्तेफाक यही मानते हैं कि मसीह माऊद का जमाना 14वीं सदी से आगे नहीं। खुद ईसाई कौमों में मसीह माऊद कि बासत का वक्त यही समझा और माना जाता है, और ज़रूरियात मशहूदा महसूसा भी इसी पर दलालत करती हैं कि आने वाले के लिए यही वक्त है। वो अलामात और निशानात जो मुकर्र किए गए थे, सब अपने अपने वक्त पर पूरे हो गए। याजूज माजूज भी मिन कुल्ले आदिबिन यंसलून का नज़ारा दिखा रहे हैं, और दज्जाल भी अपने दज्ल और फरेब से एक आलम को हलाक कर रहा है, मगर फर्जी दज्जाल जो मुसलमानों के तखयल में है, उसका भी नामो निशान नहीं।